हम इसको प्राथमिकता देकर बड़े उत्साहपूर्वक श्रद्धापूर्वक हरि कथा का और इस भक्तों के संग का आश्रय लेते, उस हद तक हम आध्यात्मिक जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन में न केवल टिके रहेंगे बल्कि धीरे धीरे प्रगति करेंगे। और महाप्रभु की कृपा से ये दी हुई तरीका कितना सुलभ है, केवल आनंद कंद सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, कोई तकलीफ नहीं है, आओ बैठो। हाँ, आने में बोलेंगे आप तकलीफ होगा, बारिश के दिन में थोड़ा तो तपस्या चाहिए, मनुष्य जीवन वही तपस्या के लिए, पर बैठो सुनो कीर्तन करो प्रसाद सेवन करो, कितना सरल कितना सुलभ तरीका, प्रभुपाद जी की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से हमें ये उपलब्ध है। पिछले दो दिनों से, कल और आज सुबह भी, हम श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद का 20वां अध्याय वृंदावन में वर्षा तथा शरद ऋतुओं का वर्णन शुकदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को कर रहे हैं। मुझे प्रेरणा मिली इन श्लोकों के बारे में चर्चा करने के लिए, क्योंकि मैं परभणी और लातूर से आया और जून 1, 2, 3 तारीख को वहां था मैं, और 46 डिग्री टेम्परेचर था उधर, 46 डिग्री, और सही में तप गए थे, तवा जैसे हो गया था जमीन और हम चपाती जैसे थे। और वहां से कोल्हापुर आया तो थोड़ा अच्छा लगा, यहां भी तापमान था, पर पिछले दो दिनों में दो अच्छी बारिश आ गई तो तुरंत आप देखते कितना मौसम बदल गया। जैसे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भूखे व्यक्ति को जो त्रस्त हो गया है उसको अगर अच्छे तरह से, जो पसीने से कई दिनों से स्नान नहीं किया है और कई दिनों से खाया नहीं है और पूरी गंदगी शरीर पर है, उसको अगर अच्छे तरह से स्नान करके खाना खिला दो तो कितना वो एकदम ताजगी फ्रेश महसूस करता है। बोले ऐसे पृथ्वी पर ये ग्रीष्म ऋतु के बाद जब पहला बारिश आता है और घमासान बारिश, वर्षा ऋतु की शुरुआत, तो एकाएक वातावरण कितना, नहीं तो इस समय में 5:30-6 बजे भी ये पतरा भी तप जाता था और उसके नीचे हम भी तपते रहते थे। अभी देखिए कितना एसी लगता है, एसी चालू हो गया, एयर कंडीशन चालू कर लिया, नैसर्गिक एयर कंडीशन। तो सुखदेव गोस्वामी वृंदावन में वर्षा ऋतु का वर्णन करते, ये सारी ऋतुएं जो है भगवान ने, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते, भगवान ने निर्माण किया है सारे ऋतुओं का, और हर एक ऋतुओं का एक एक खासियत है। और केवल भारत में खास करके, दूसरे देशों में एक ही ऋतु होता है, बस ठंडी होती है, बस बर्फ होता है 8 महीना और थोड़ा बर्फ कम होता है 2-4 महीने, थोड़ा सूरज दिखता है बस, बारिश वारिश हाथ कुछ होता ही नहीं, कुछ ऐसे सारे हेमंत ऋतु वसंत ऋतु कुछ होता नहीं है, सब शरद ऋतु। यहां हम देखते हैं 6 ऋतुओं का 2-2 महीने में, और हर एक का एक एक सौंदर्य, खास करके वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन है यहां। तो ये भी भगवान के जो सुंदर कृपा है लोगों के ऊपर, उसका यहां वर्णन समझ पाते हैं। और सुखदेव गोस्वामी इन वर्षा ऋतु के वर्णन के द्वारा वर्षा ऋतु का चार या पांचवें श्लोक से 31वां श्लोक, मतलब कितना श्लोक हो गया, 26 श्लोक, 26 श्लोकों में न केवल वर्षा ऋतु के सौंदर्य, वृंदावन का सौंदर्य वर्षा ऋतु में न केवल इसका वर्णन किया है, साथ साथ इन ऋतुओं में जब हम चारों ओर देखते हैं, इन दृश्यों के द्वारा परम सत्य का साक्षात्कार भी कैसा किया जा सकता है, क्या सीख सकते हैं हम। अंततः हम जो भी कर रहे हैं, हमारी जो लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार, उसकी ओर हमें बढ़ना है। तो बहुत ही सुंदर उपमाओं के द्वारा हमें सिखा रहे हैं कि किस तरह से एक महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में सीखना है, एक एक चीजों का वर्णन करते हुए। तो सुबह हम काफी 3-4 श्लोकों का वर्णन किए, अभी उसी को हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां ये श्लोक क्रमांक 10 है। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य को शरीर संपत्ति तथा धन हो। यानी हम देखते हैं वर्षा ऋतु में जैसे पहली बारिश आती है या 2-3 दिन बारिश आ जाती है, तो छोटे छोटे पोखर, क्या बोलते हैं, छोटे छोटे तालाब जैसे, यहां भी एक कुंड जैसा है हमारे इसके पीछे, हरिओम नगर के उस तरफ पीछे छोटा, वो भर गया, हरा भरा हो जाता है, पक्षी आ जाते हैं, बेडूक आ जाता है उसके अंदर, कितने सारे छोटे। और अगर आप जाएंगे कहीं लोनावाला साइड में, वहां जाएंगे कई सारे झरने आ जाते हैं, छोटी छोटी नदियां बहने लगती है एकाएक। और केवल वो सीजन में जो जाता है उसको लगता है कि वाह क्या दृश्य है, शायद पूरे साल भर ऐसा रहता है, नहीं, ज्यादातर दो या चार महीने के लिए बस, हमेशा सूखा रहता है, केवल 2 या 3 महीने के लिए इतने तालाब, इतने नदियां बहने लगती है, इतने सारे झरने गिरने लगते हैं, उस समय जाके लोग उसका आनंद लेते हैं। और कई पक्षियों को और कई जो मेंढक है उनको लगता है कि वाह परमानेंटली यहां मैं रहने वाला, यही मैं अपना घर बना के रहूंगा। छोटी छोटी मछलियां वहां रहती है, उन्हें ये नहीं मालूम कि 4 महीने के बाद सब सूख जाएगा। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन के साथ सूखी हुई नदियां बढ़ने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर संपत्ति तथा धन। इस संसार में यह शरीर भौतिक संपत्ति तथा धन जो है, यह भी हम देखते हैं एकाएक अच्छा हो जाता है तो लोगों को लगने लगता है कि वाह इसका हम आश्रय लेंगे और हम सुखी रहेंगे, हमारा शरीर हट्टा कट्टा है ऐसा ही रहेगा। पर यही शरीर जिसका हम आश्रय लेंगे कल हमें निराश्रय कर देगा, 2 दिन की जवानी कहते हैं ना, इस तरह से ऐसा चला जाता है, देखते 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 बुढ़ापा आ जाता है, या कुछ संपत्ति ऐसा सब बढ़ जाता है, किसी को अच्छा कुछ लॉटरी लग गया, एकाएक हम देखते हैं वो करोड़पति बन गया। पर उस चीजों का अगर आश्रय ले ले, शास्त्र में वर्णन है यस्यार्थः तस्य मित्राणि, यस्यार्थः जिसके पास पैसा है उसके बहुत सारे मित्र हैं, यस्यार्थ तस्य बांधवा, जिसके पास बहुत पैसा उसके बहुत सारे बंधु बांधव हैं। आपको याद दिलाएंगे मैं कौन हूं, आपके चाचा के मामा का पोता का तीसरे भाई का उसका छोटे भाई का लड़का, मालूम नहीं। यस्यार्थ तस्य बांधवा, यस्यार्थ स पुमान लोके, जिसके पास पैसा है वो सही में व्यक्ति है, सही में वो पूजनीय है समाज में। और यस्यार्थ सच पंडित, वो जो कहेगा सब लोग कहेंगे एकदम सही साहब, क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो ना। वो बेचारा कोई भाई बिना पैसे वाला सत्य भी कहेगा तो कोई सुनेगा नहीं उसका। तो इस तरीके से इन चीजों का लोग आश्रय ले लेते हैं, लगता है कि हमेशा रहेगा, इतना हरा भरा हो जाता है, झरने गिर रहे, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही रहना चाहिए। पर ऐसा नहीं रहता, सब कुछ धीरे 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 नष्ट हो जाता है। तो केवल छोटी छोटी मछलियां, ऐसे कोई पशु पक्षी या मेंढक जो है, इन चीजों का आश्रय लेते हैं, ये समझकर कि हमेशा रहेंगे। तातल सैकते वारी बिंदु समा, सुक्तम इतर रमणी समाज। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, विद्यापति नाम के एक महान कवि हुए भक्त, वो लिखते हैं तातले सैकते, मतलब क्या बोलते हैं, रेगिस्तान में जहां जल रहा है, जमीन जल रहा है और सूरज है, तब ऐसी जगह में सूखा जा रहा है, वहां वारी बिंदु, एक बिंदु पानी, एक बूंद पानी, आप समझ लीजिए रेगिस्तान में जा रहे हो, ऊपर से धूप, नीचे से जो रेती है वो भी जला हुआ है, पैर जल रहा है, सर जल रहा है आपका, अपना अस्तित्व सूखा जा रहा है, पानी की जरूरत है, प्यास लग रही है, और वहां एक बूंद पानी है या एक छोटा सा इसके ऊपर पानी है, इतना, चार बूंद पानी, क्या प्यास बुझेगा आपका, क्या जीवन आ जाएगी उसमें? नहीं, उतरेगा भी नहीं, जिह्वा से नीचे उतरने तक ही सूख जाएगा। सुतम इतर रमणी समाज। तो इस तरह से बंधु बांधव, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन तलमल, भजहु हरिपादनी तीरे। तो आचार्यों ने सत्य का दर्शन किया है और सत्य का दर्शन कराते हैं, इनको दार्शनिक कहते हैं, दर्शन कराते हैं हमको। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान के अंधकार में हम जो पैदे हुए हमको, हमको ज्ञान का दृष्टि से बोलते किस चीज का आश्रय लेना है हमें। ऐसे नदियों का आश्रय मत लो, क्योंकि ये नदियां जो हैं ये हमारे प्यास को बुझा नहीं सकते, हमेशा के लिए नहीं बुझा सकते। आत्मा शाश्वत है, कोई शाश्वत चीज और शाश्वत चीजों का आश्रय लेकर संतुष्ट नहीं हो सकता हमेशा के लिए। तो हमें ऐसे नदियों का आश्रय ले लेना चाहिए। फिर कैसे नदियों का आश्रय लेना चाहिए? ऐसे नदी जो हमेशा बहती रहे। कौन सी नदी? कृष्ण कथा की नदी। कृष्ण कथा की नदी जो है करोड़ों साल से बह रही है और करोड़ों साल से बहती रहेगी। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला, पाथो जनी भ्राजिता, सद्भक्ता वलिहंस चक्र मधुपा, श्रेणी विहारास्पदम, कर्णानंदी कलध्वनि वहतु में, जिह्वा मरु प्रांगणे, श्री चैतन्य दयानिधे तबल सद लीला सुधा स्वरधुनी। स्वरधुनी का मतलब है गंगा जी, गंगा जी का दूसरा नाम है स्वरधुनी। तो हरि कथा, भगवान के संबंधित जो कथा है, भक्तों के साथ सुंदर लीला की हुई, कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की जो कथा है वो कथा कैसी है? गंगा है, वो गंगा बह रही है, क्योंकि ये गंगा हमारे आत्मा की जो प्यास है उसको पूर्ण रूप से बुझा सकती है। तव कथा तव लीला सुधा, भगवान की जो नाम रूप गुण की लीला है वो लीला कथा गंगा जैसी है, लीला सुधा स्वरधुनी, और वो बह रही है वो गंगा। और कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन कला, अच्छा पहले ही तो गंगा बहुत सुंदर है, पर उस गंगा में अगर कमल खिले हो तो और भी आकर्षित हो जाता है। तो भगवान की कथा, नाम रूप गुण और लीला की जो कथा है वो कथा बहुत गंगा जैसे है, हमारे न केवल हमारे अस्तित्व को शुद्ध करती है गंगा जी, हमारे प्यास को भी बुझाती है। जो गंगा में स्नान करता है पाप से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से भगवान की जो नाम रूप गुण लीला की कथा है वो शुद्ध भी करता है और हमारे आत्मा की प्यास को भी बुझा देता है। पर ये गंगा में अगर कमल खिले हो तो और भी आकर्षित है। तो ये गंगा में कमल खिलने का मतलब क्या, वही नाम रूप गुण लीला को जब उत्कीर्तन गान नर्तन, वही भगवान के नाम को गा के सुनाते हैं या मृदंग करताल के द्वारा कीर्तन करके सुनाया जाता है भगवान के सुंदर लीलाओं को, अलग अलग नामों को, तो और भी मधुर होता है। कर्णानंदी कलत ध्वनिर वह तुम्हें, हमारा हृदय जो है सूखा हुआ है, सूखा यानी रेगिस्तान के समान है, हमारा हृदय रेगिस्तान के समान है, गर्मी के बाद कैसा हो जाता है, पूरा सूखा सूखा रहता है जमीन, इस तरह से हमारा हृदय सूखा हुआ है। और इस सूखे जमीन में हम पानी डालने का प्रयास कर रहे हैं इंद्र तृप्ति के द्वारा, सुतमितर रमणी समाज, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरा, इससे हम लोग सुख पाने का, भौतिक सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं। पर ये कैसा है, एक बकेट पानी अगर कोई रेगिस्तान में फेंके क्या होगा, आपको देखा है, आपने कभी देखा है, एक टैंकर में ले जाइए पानी और करके छोड़ दीजिए रेगिस्तान, अभी निकला भी नहीं सूख जाएगा वो, कहां गया समझ में नहीं आएगा। पर अगर लगातार गंगा बहती रहे समुद्र में, रेगिस्तान में, तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि गंगा जी लगातार बहती है, वो रेगिस्तान भी धीरे धीरे एक उपजाऊ भूमि बन जाता है। इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मेरे कानों के द्वारा कृष्ण के नाम रूप गुण का लीला कथा खिले हुए कीर्तन जो है, ये कानों के द्वारा लगातार मेरे हृदय में बहते रहे, तो ये मरुभूमि भी धीरे धीरे उपजाऊ बन जाएगा, भक्ति लता बीज बढ़ेगी और प्रेम का फल निकलेगा। तो इसीलिए ऐसी कथा जहां बहती है सत्संग में, वहां भक्त लोग एकत्रित हो जाते हैं, कौन, बुद्धिमान व्यक्ति, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसी गंगा जहां बहती है वहां आश्रय लेते हैं, ये छोटे मोटे नदी पोखरों में आश्रय नहीं लेते। सदभक्तावली, सदभक्त आवली, आवली मतलब दीपावली बोलते हैं ना, दीपों को अगर एक लाइन में दीपावली ऐसे यहां से बैठ के देखोगे आप, सदभक्तावली, सब लोग बैठे हुए लाइन लाइन में बैठे हुए, कुछ तो बाहर भी गए हुए। सदभक्तावली कैसे हैं ये लोग, हंस चक्र मधुपा, हंस के समान है, चक्रवाक पक्षी के समान है, भृंग के समान है, जो इस गंगा जी का आस्वादन करने के लिए आती है। हम सचक्र मधुपा श्रेणी विहार आस्पदम, ये यहां विहार करने का जगह है, जैसे गहां जहां अच्छे अच्छे ऐसे नदी बहते हैं वहां हंस चक्र, चक्रवाक पक्षी, मधु, भृंग, ये सब भ्रमण करते हैं। कौवे वहां नहीं दिखते, गंगा के पास हिमालय में कौवे नहीं दिखते, वो सिर्फ बंबई में दिखते हैं, जहां सारा कचरा फेंकते हैं ना वहां कौओं का तीर्थ स्थान है। तो इस तरह से जहां ये न्यूज़पेपर मैगजीन सब होता है वहां सब मक्खी जैसे कौवे जैसे ये लोग एकत्रित हो जाते, हंस वहां एकत्रित नहीं होते। हंस तो वहां जाते हैं हिमालय में जहां गंगा जी बहती है। तो इस नदी का आश्रय लेना चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति है, क्यों जानते हैं कि ये हमारे न केवल प्यास को बुझाएगा पर ये गंगा जी जो है इस कभी रुकेगा नहीं है, इसका बहना कभी रुकेगा नहीं। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हमें मूर्ख जैसे ऐसे चार दिनों के बने हुए छोटी छोटे कुएं कुएं ने छोटे छोटे पोखर छोटे छोटे इस नदियों की धाराएं जो हैं इन चीजों का आश्रय नहीं लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है ये सिर्फ 2 महीने का है बस, इसके बाद ये सूख जाएंगे सब। लेना है तो गंगा नदी का आश्रय लो, वो कभी सूखेगा नहीं, चाहे वो बारिश हो या गर्मी हो कोई भी ऋतु हो हमेशा बहती रहेगी गंगा। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं और एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अपनी अन्न रूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदयों को में पश्चाताप उत्पन्न कर रहे थे जो इतने घमंडी थे कि खेती के कार्य में नहीं लगना चाहते हैं और ये नहीं समझ पाते कि किस तरह हर वस्तु भगवान के अधीन है। जब बारिश आता है तो सबसे प्रसन्न कौन होता है? किसान। क्यों? इतना मतलब उसने खेत जोता हुआ है, मतलब खेत ठीक किया है, सब कुछ बीज बोया हुआ है और राह देख रहा है और ठीक बारिश आ जाए प्रफुल्लित हो जाता है और जितना ज्यादा बारिश आए उतना अच्छा लगता है। शहर के लोगों को अच्छा नहीं लगता बारिश आ गया, पूरा प्लान अरे हम लोग कहां कहां जाना था, घूमना था, अभी सब गटर बन जाएगा अभी सब जगह। गांव हमेशा वो कोसते हैं, वो नाक ऐसे करके देखते हैं क्या पूरा प्लान बिगड़ गया, आज मैं उधर घूमने जाना था होटल जाना था अभी कहीं नहीं जा सकते ट्रैफिक जाम हो जाएगा, समझ नहीं पाते वो लोग। उनको ये नहीं मालूम कि पूरा जिंदगी भर मतलब साल भर जो खाते हैं यही बारिश उनको खिला रहा है, ना केवल मनुष्य को सारे पशुओं को पक्षियों को पेड़ों को यही तो जान दे रहा है। अज्ञान के कारण और घमंड के कारण उनको लगता है कि हमारे साइंस के द्वारा हम ऐसे अनाज उगा लेंगे, क्या बारिश की जरूरत है भगवान की, इतना उल्टा सीधा टाइम पे बारिश करा देते हैं पूरा योजना बंद हो जाता है हमारा, नहीं समझ पाते अज्ञान के कारण और घमंड के कारण। और हम देखते हैं आधुनिक समाज में किस तरीके से लोग जो व्यापारी लोग हैं जानबूझ के एक स्केर्सिटी पैदा करते हो, कमी पैदा करते हैं जानबूझ के, क्योंकि कोई भी चीज मार्केट में बहुत ज्यादा तरीके पे आ जाए तो भाव कम हो जाता है, फटाफट बेचना पड़ता है। तो जो बहुत ही मतलब चालाकी व्यापारी होते हैं जानबूझ के ऐसा, वो नहीं चाहते कि प्रचुर मात्रा में सब प्रकार के चीजें उपलब्ध हो, क्योंकि जितने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है उतना पैसा कम हो जाता है, भाव कम हो जाता है तो उनका प्रॉफिट कम हो जाता है। मूर्खतावश बहुत ही क्या बोलते हैं स्वार्थ दृष्टिकोण के कारण वो समझ नहीं पाते और वो कोसते हैं इस बारिश को। ऐसी कई सारे पाश्चात्य देश में मैंने सुना है, यहां भी तात्पर्य में लिखते हैं हृदयानंद महाराज के प्रभुपाद जी के शिष्य इत्यादि, कि कई जगह किसानों को पैसा दिया जाता है कि तुम कुछ मत उगाओ, क्योंकि तुम उगाओगे तो हमारा मार्केट में थोड़ा डाउन प्राइस डाउन हो जाएगा। कई देशों में करोड़ों हजारों हजारों टन के अनाज समुद्र में डुबा दिया जाता है ताकि भाव में कम ना पड़े उस अनाज के भाव में और हमारा प्रॉफिट अच्छे बने। दुर्भाग्यवश ऐसे लोग घमंडी लोग या अज्ञानी लोग या स्वार्थी लोगों के समाज में उनको ये अच्छा नहीं लगता, पर अगर नेतृत्व एक सही व्यक्ति के हाथ में हो, एक आदर्श सरकारी नेता के हाथ में हो, उन्हें बहुत आनंद आता है, जितना ज्यादा प्रचुर मात्र सब लोग सुखी रहे, समृद्धि रहे, सब आनंदित रहे, आनंद की बात है, खुश की बात है, अच्छा है, बारिश अच्छा हो गया आज, इस बार बहुत अच्छा बारिश हुआ। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जो घमंडी है मानी नाम अनुतापम वही देवधि, क्यों नहीं जानते कि तुम्हारे इन चीजों से समाज नहीं चल रहा है, कि भगवान की कृपा से चल रहा है, ये समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, संबंध नहीं। जैसे कुछ बच्चे हैं शहर में, उनको पूछो दूध कहां से आता है, बॉटल से आता है, दाल कहां से आता है, पैकेट में आता है, मालूम, मुझे भी काफी समय तक मालूम नहीं था ये सब कहां से आता है, कभी गया नहीं था, मैं गांव में कभी गया नहीं, जमीन के साथ संपर्क नहीं हुआ, हमेशा चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, सीमेंट का घर, वहां से टार का रोड, फिर वहां से ऑफिस, वहां से स्कूल, जमीन के ऊपर पैर लगा ही नहीं है, धूप कभी सर पे गिरा ही नहीं है, निसर्ग से इतना दूर चले गए हैं, तो हमको ये नहीं समझता बारिश की महिमा क्या है, क्यों चाहिए बारिश, क्या आ गया बारिश। तो कितना प्रकृति से हम दूर हो गए हैं, नैसर्गिक जीवन से दूर हो गए, जितना दूर होंगे उतना जोर से थप्पड़ पड़ेगा, जितना हम पिता को नकारते हैं माता थप्पड़ मारेगी, माता छिपाएगी सारे धन संपत्ति को। फिर और एक सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं अगले श्लोक में, क्योंकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए उनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए, जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। जल और जलस्थलौ कसह सर्वे नववारी निषेवया, जल स्थल ओकसाम, ओकसाम मतलब जल में निवास करने वाले और स्थल पर निवास करने वाले जीव, जलस्थलौ कसह सर्वे नववारी निषेवया, नववारी नया बारिश के बूंदे जब गिर रही है, बारिश गिर रही, पानी गिर रहा है, इस जल का, वर्षा के जल का आस्वादन करके खिल गए एकदम, कैसे, अभिभ्रन रुचिरम रूपम यथा हरि निषेवया, हरि की सेवा करने के बाद आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है, और जब आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है तो चेहरे में वो दिखता है। आप जितना भी बाहर रूप से खुश होने का दिखावा करो, पर जब तक संतुष्टि आनंद हृदय से नहीं है, तब तक बाहर से कितना भी हो संतुष्ट नहीं है आदमी। पर जब हरि भजन शुरू करता है, हरि सेवा, हरि कथा करता है, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती, आत्मा आनंदित हो जाता है, और भले शरीर कैसा भी हो, देखने में कुरूप क्यों ना हो, फिर भी चमक आ जाता है उस शरीर में, नजर आता है, समझ में आता है कि व्यक्ति संतुष्ट है, खुश है। श्रील प्रभुपाद जी इसके उदाहरण में अपने एक अनुभव की बात कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस्कॉन में हमें अपने विद्यार्थियों के साथ इसका व्यावहारिक अनुभव है। विद्यार्थी बनने के पूर्व वे गंदे लगते थे, भले ही उनके अंग प्रत्यंग स्वरूपवान थे। ये जो पाश्चात्य देश में जब प्रभुपाद गए, ये हिप्पी लोग जो थे देखने में गंदे थे, मतलब कई दिन से स्नान नहीं किया, कपड़ा ऐसा, शरीर बाल इतने इतने लंबे, देखने में उनका शरीर बहुत सुंदर था, गोरे थे, अच्छे हटे कट्टे नौजवान, सुंदर स्त्रियां, पर बाहर से पूरे गंदगी थी, हिप्पी बन गए थे। किंतु कृष्ण भावनामृत के विषय में कोई जानकारी न रखने के कारण वे गंदे और दुखी लगते थे। अब कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने के अनंतर उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और यम नियमों के पालन करने से उनकी शारीरिक कांति भी बढ़ गई है। जब वे केसरी वस्त्र धारण करके अपने मस्तर पर तिलक लगा लेते हैं और अपने हाथों में तथा गले में मालाएं पहन लेते हैं तो वे इस तरह लगते हैं मानो सीधे वैकुंठ से चले आ रहे हो। मैंने देखा, आप देखिए, इंद्रद्युम्न महाराज जब आते हैं और वो रशिया के या ये अमेरिकन लोग आते हैं ऐसे, एक तो 6.5 फुट के होते, वो हट्टे कट्टे होते हैं, गोरे एकदम लाल लाल होते हैं और वो भी केसरी ऐसा पिंक वाला वस्त्र धारण करके इतना लंबा तिलक और कंठी माला पहन के ऐसा हरिनाम करके आते हैं, ऐसा लगता है सीधा अभी उतर के आ रहे हैं वैकुंठ से। ऐसे सुंदरता कैसे हो गए, पहले तो हिप्पी थे, फ्रॉम हिप्पी दे बिकेम हैप्पी, वो बात कहते हैं हिप्पी से हैप्पी बन गए वो लोग। क्यों? क्योंकि अंदर से व्हाइट वॉश हो गया, हृदय से। आत्मा भगवान के साथ जब संपर्क रखता है, आत्मा का खाना है भगवान का नाम, भले हम समझे या नहीं समझे, जाने या नहीं जाने, पर आत्मा का खाना है। भक्तों के संग में आकर श्रद्धा पूर्वक अगर हरि कथा का आश्रय लेते हैं, स्वाभाविक रूप से हम संतुष्ट हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और ये यहां सुखदेव गोस्वामी बता रहे। और एक कितना सुंदर सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, देखिए अगले श्लोक में कहते हैं कि जब ये बारिश बड़े बड़े पर्वतों के ऊपर बरसते हैं, उसमें आपने देखा होगा, मैं थोड़ा संगम ने रो साइड में जाइए या जहां बारिश होता ही नहीं है, सूखे सूखे नंगे पहाड़ दिखते हैं वहां, और फिर जब बारिश आती है वहां देखिए पूरा हरा भरा हो जाता है, वो 4 महीने के लिए कम से कम एकदम हरा भरा हो जाता है, बहुत सुंदर दृश्य। और जितना ज्यादा बारिश आता है उतना स्वच्छ हो जाता है, मानो स्नान किया गया हो उस पर्वत को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिस प्रकार भगवान में लीन मनो वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से के प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वतगण तनिक भी विचलित नहीं हुए। नदियों में बाढ़ आ जाती है, समुद्र भी थोड़े उथल पुथल होते, पर जब पर्वत के ऊपर बारिश आती है, कितना भी घनघोर बारिश आए, जितना ज्यादा बारिश आता है उतना वो पर्वत चमकता है और उतना प्रज्वलित हो जाता है, उतना तेजोमय हो जाता है। कैसे? जिस प्रकार यहां कहते हैं अभिभूयमाना व्यसनैर, के जिस व्यक्ति का मन पूर्ण रूप से भगवान में लगा हो, उस व्यक्ति को भले इस संसार में बहुत सारे ऐसे तूफान, बारिश जैसे तूफान आए, पर जितना ऐसे आता है उतना ही वो व्यक्ति और भी भगवान का आश्रय लेकर और भी थोड़ा शुद्ध और भी उत्साहमय हो जाता है और भी प्रगति करने लगता है। ये अंतर है। गीता के दूसरे अध्याय में अंत में वर्णन है, कभी कभी नदियां, बहुत सारी नदियां आके समुद्र में मिलती है, पर समुद्र उथल पुथल नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्र इतना गहरा है कि नदी का पानी आए या नहीं आए, समुद्र तो रहेगा ही, अपना अस्तित्व उसका अलग है। इसी तरह से द्वंद्वों से परे जो भगवान के शरण भगवान की शरण लिए हैं, ऐसे भक्त गणों के जीवन में भले जितना भी बारिश आ जाए, समस्याओं की बारिश, पर क्योंकि वो पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, वो विचलित नहीं होता। क्यों? तो तेनुकंपम सुषमिक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृद वाग वपुर्भिर विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय भाक। हर एक स्थिति में वो अनुकंपा, भगवान की अनुकंपा देखता है और बुरे प्रसंग में समझता है कि इससे भी ज्यादा मुझे चाहिए था, पर भगवान ने कृपा करके एक सैंपल दे दिया। और अच्छे प्रसंग में समझता है मैं योग्य नहीं हूं, पर प्रोत्साहन देने के लिए, मुझे उनको मालूम है कि मैं इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मुझे थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए कुछ अच्छे दिन भी दिखा दिया भगवान। तो दोनों स्थिति में भगवान को धन्यवाद देता है वो, और इसीलिए वो विचलित नहीं होता, कभी वो विचलित नहीं होता है इस जीवन में। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। ध्रुव महाराज का प्रसंग में भी यही उदाहरण मिला है। ध्रुव महाराज जब वापस भगवान का दर्शन किए, वापस आ गए, तो एक दिन उनका भाई जो था, चचेरा भाई उत्तम गया कहीं भ्रमण करने के लिए, और कुछ यक्षों ने उसे मार दिया, जान से मार दिया। ध्रुव महाराज को बहुत क्रोध आया, कह रहे मैं पूरे विश्व का सम्राट और मेरे भाई को उन्होंने मारा, ये मेरा कर्तव्य है कि उसका मेरा बदला लेना चाहिए। तो ध्रुव महाराज अकेले सीधा चले जाते हैं यक्षों से लड़ने के लिए, और यक्ष हिमालय पर्वत पर वहां जाते हैं और वहां से शंख बजाते हैं। इतने जोर से शंख बजाते हैं कि सब यक्ष हिलने लगते हैं। सीधे घुसते हैं धनुष बाण लेकर, और जितने यक्ष आते हैं सबको मार देते, खत्म कर देते, तो सब भाग जाते हैं यक्षगण। तो ध्रुव महाराज को लगता है कि अरे बहुत जल्दी सबका सब खत्म हो गया। थोड़े समय तक शांत रहता है, पर ध्रुव महाराज को लगता है कि नहीं, इससे पहले बहुत बड़ा एक तूफान आने वाला, बड़े तूफान से पहले भी थोड़ा शांत वातावरण हो जाता है, जैसे सुनामी आया ना पहले। तो एक वीडियो मैंने देखा, सुनामी बड़ा आने से पहले पानी पीछे चला गया, पूरा पीछे चला गया, समुद्र खाली हो गया लगता है ऐसा। तो लोगों को लगा अरे पहली बार खुला, चलो अंदर जाके देखते क्या है समुद्र। और बाद में इतना बड़ा लहर आया, उनको नहीं सबको उठा के ले गया उधर से। तो इस तरह से द काम बिफोर द स्टॉर्म बोलते। तो ध्रुव महाराज को लग रहा था इतना एकाएक सब लोग सब शांत शांत लग रहा है, मतलब कुछ तैयारी हो रहा है, अभी आने वाला कुछ तो बड़ा। और एकाएक 130,000 सेना आ जाती यक्ष अकेले ध्रुव महाराज को आक्रमण करने, और इतना तीर चलाते हैं मानो तीरों का बौछार ऐसा रहता है कि पूरा ढक जाते हैं। ऐसा लग रहा था, उदाहरण दिया जाता है, सूरज समुद्र में किस तरह से डूब जाता है शाम के वक्त, ऐसे डूब जाता है, इस तरह से ध्रुव महाराज का जो ये जो रथ था वो यक्षों के प्रहार से पूरा ढक गए। और सब हाय हाय कहने लगे, सिद्ध चारण लोग बोले गए ध्रुव महाराज। पर जिस प्रकार बारिश के बाद फिर से जो पहाड़ चमकता है, इस तरह ध्रुव महाराज फिर से ऊपर आए और पूरे बौछा फिर वो वापस करने लगे, और सबके सबको इस तरह से मार काट डाले, किसी का गला उड़ के, बच्चे अच्छे पगड़ी पहने हुए थे ये लोग को क्या बोलते हैं यक्ष लोग, सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी, ये तिब्बत के लोग होते हैं ना, वो स्वेटर वेटर बेचते हैं, आप लोग देखो रंग बिरंगी कपड़े वस्त्र, उनके कुंडल भी लंबे लंबे थे, उड़ उड़ के जा रहे थे, सबका गला, किसी का हाथ, किसी का पैर, और गोरे गोरे लोग होते हैं, बड़ा रंग बिरंगी दिख रहा था, सबको मार डाले। सबको मार डालने के बाद फिर से भाग गए सब लोग। फिर ध्रुव ने बोला अब तो लगता है वापस कुछ नहीं होगा। फिर देखा कि पहले तो स्थूल रूप से आए थे आक्रमण करने, अब बड़े वो भी कोई कम नहीं थे, उनके पास भी बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां थी। उन्होंने अपने मिस्टिक पावर सिद्धों के सिद्धि के द्वारा ऐसा कुछ ये किया, तरीका दिखाया कि लाखों ऐसे बड़े बड़े राक्षसिया जैसे लोग आ रहे हैं वहां से, और मल मूत्र और खून इत्यादि का बारिश होने लगा, पहाड़ आने लगे, गिरने लगे, और सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र सब उन पर आने लगा। बोले क्या हो रहा है ये सब चारों ओर से? तो ध्रुव महाराज थोड़े निरुत्साह होने लगे, बोले क्या हो रहा है ये, इस पे मैं अकेला क्या करूं मैं? और तब सारे भक्त आकाश में एकत्रित हो गए, महान सिद्ध चारण ऋषिगण, और वहां से ध्रुव महाराज को कहने लगे, कोई चिंता मत करो, तुम्हारे पास जो नारायण अस्त्र है उसका उपयोग करो, ये सारे मायावी चीज सब चले जाएंगे। तो फिर जैसे ध्रुव महाराज इन ऋषियों की आशीर्वाद और प्रोत्साहन से अपने नारायण अस्त्र निकाले और धनुष पे केवल लगाया पूरे विश्वास के साथ इन महान महात्माओं के वचनों पे विश्वास और प्रोत्साहन लेकर सिर्फ उस नारायण अस्त्र को धनुष में लगाया और जैसे वो खींचे, अभी तक तीर छोड़े नहीं है पर उन तीरों में से हंस के पंख वाले लाखों तीर निकलने लगे और जितनी सारी माया से प्रकट की हुई सारी चीज एक क्षण के अंदर गायब हो गए। एक क्षण के अंदर ऐसा लग रहा था कि मैं नष्ट हो गया, खत्म हो गया, पर जैसे उन्होंने नारायण अस्त्र लगाया तुरंत सब कुछ गायब हो गया। कोई माया मायावी शक्ति नारायण अस्त्र के सामने काम नहीं कर सकती। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसी तरह से कलयुग में कभी कभी जनस्य मोहोयम अहम ममेति, शरीर और इससे संबंधित चीजों में बहुत सारे चीज एकाएक आने लगते हैं हमारे जीवन में, कोई चीज ठीक नहीं जा रहा है, जहां भी कुछ करने का प्रयास करो सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, अरे भक्ति में जब से आया तब से सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। ध्रुव महाराज तो भगवान का दर्शन किए थे, इस तरफ से पहाड़ गिर रहा है, इस तरफ से खून गिर रहा है, इस तरफ से मलमूत्र गिर रहा है, इस तरफ से बड़े बड़े अस्त्र, ये हो क्या रहा है? और तब हमें याद करना चाहिए क्या हमने सुना है के कृष्ण सूर्य समय माया है अंधकार, उस समय हमारा नारायण अस्त्र निकालना चाहिए हमको। और ये नारायण अस्त्र कौन सा है? कृष्ण का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यजन्ति हि सुमेधसा कृष्णवर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम। ये अस्त्र है, ये नारायण का अस्त्र है, अभिन्नत्वात् नामनामिनः। ये नाम जो है नारायण अस्त्र से अभिन्न है। जिस तरह से विश्वास के साथ पूर्ण रूप से अगर हम ध्रुव महाराज ने आश्रय लिया, अगर ऐसे आश्रय लेंगे तो ये जो माया है, शोक मोह भय, माया से तीन चीज होता है, शोक अशोचान अन्वशोचस्तम, जिस चीज के लिए शोक नहीं करना है उसके लिए शोक करने लगते हैं, मोह में आ जाते हैं। मोह का मतलब क्या? असत चीजों को सत मानने लगते हैं और सत चीजों को असत मानने लगते हैं, नश्वर चीजों को शाश्वत मानने लगते हैं, शाश्वत चीजों को नश्वर मानने लगते हैं। भय, भय क्यों उत्पन्न होता है? भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्याद, जब हम समझते हैं कि भगवान से परे भी कुछ चीज है और वो अगर हमारे ऊपर आक्रमण किया है तो बेचारे भगवान क्या कर पाएंगे। भयम द्वितीय, जब हम सोचते हैं कि भगवान से परे भी कोई चीज है द्वितीय कुछ दूसरा चीज है जो भगवान से स्वतंत्र है, जो भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और वो अगर मुझ पर आक्रमण करे तो बेचारे भगवान क्या कर पाएंगे, तब भय उत्पन्न होता है। हम किसी चीज का आश्रय ले रहे हैं और उससे भी कोई शक्तिशाली चीज आ जाए तब भय उत्पन्न होता है। आप सोचो आजकल के जो बड़े बड़े गुंडे लोग हैं ना, उनको पुलिस का डर ही नहीं, इंस्पेक्टर को फोन कर लो, क्यों? क्योंकि उसका ऊपर वाला बॉस मेरा पहचान है, उसे फोन करूंगा उधर से आएगा, ये छोड़ दो मेरा आदमी, छोड़ दे, अरे भय नहीं उनको, क्योंकि सबसे बड़ा वाला पहचान मेरा है, वो अगर फोन किया ना सब लोग अपने आप लोग हट लेंगे। भयम द्वितीय अभिनिवेश, अभिनिवेश अभिनिवेश मतलब पूर्ण रूप से मग्न हो जाना, भगवान से अलावा और किसी चीज में मग्न हो जाना तो भय उत्पन्न होता है। शोक मोह भयापह, पर क्या हमें विश्वास है, क्या हमें, हमारे मंदिर में एक भक्त हैं, वो 15 साल नेवी में थे, मिलिट्री में, तो वो एक बार ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, बोले मिलिट्री में उनको एक वाक्य सिखाया गया, द मोर यू स्वेट इन पीस टाइम द लेस यू ब्लीड इन वॉर टाइम। मिलिट्री वाले लोग हैं, बोले जब शांत है उस समय जितना तुम लोग पसीना छोड़ोगे ना उतना युद्ध के समय कम खून बहेगा, अगर जब शांत है उस समय सोते रहोगे पसीना नहीं छोड़ोगे तो खून ज्यादा बहेगा युद्ध के समय, यानी जब शरीर स्वास्थ्य में, शरीर में स्वास्थ्य है, सब कुछ ठीक ठाक है, अभी से अगर तैयारी नहीं करेंगे, अभी से आश्रय नहीं लेंगे, अभी से अच्छी तरह से भक्ति नहीं करेंगे तो फिर मृत्यु के समय लड़ाई जब आएगी, ऐसा बड़ा आक्रमण होने वाला है, अगर हमारी तैयारी ठीक नहीं है पहले से तो उस समय फिर से आश्रय लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, अभ्यास नहीं है। अगर अभ्यास है तो वे स्वाभाविक रूप से आश्रय लेंगे, अभ्यास ऐसे होना चाहिए। ये हमारी साधना क्या है, साधना मतलब हर रोज भगवान का आश्रय लेने का प्रयास नाम जप के द्वारा। क्या वो प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं बहुत सुंदर से, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे का होए। दुख में सिमरन सब करे, समस्या आती है तो तब याद करते, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे, अगर सुख में स्मरण कर रहे हो भगवान का तो दुख काहे का होए, दुख होता ही नहीं, हो दुख भी को उसको भी अलग रूप से देखते हैं हम। तो इस तरह से यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस पर्वतों पर जब बारिश होती है, कितना भी बारिश हो जाए, जितना ज्यादा बारिश होती है उतना उठकर चमकते हैं ये पर्वत, इस तरह से एक अच्छा भक्त जो है जितना इस तरह से क्या बोलते हैं समस्याएं आती, इसीलिए कुंती महारानी जैसे, ऐसे पर्वत जैसी स्त्री, महान सती कितना सुंदर से कहती है विपद असंतुता शश्व, क्यों? क्योंकि उस समय मैं आपका आश्रय लूंगी पूर्ण रूप से, वो समझ सकती है क्योंकि अच्छा तरीका है आश्रय लेने का। क्योंकि आश्रय कब लेंगे, जब हम समझते हैं कि हम वी आर हेल्पलेस, निस्सहाय, जब हमको लगता है कि नहीं मैं खुद का संभाल सकता हूं तो आश्रय लेने की जो प्रेरणा उतनी नहीं मिलती। जो भी परिस्थिति हमको निस्सहाय कर देता है ना, हमारे लिए भौतिक रूप से एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या कहेंगे, एम्बैरेसमेंट, संकोच या परेशान या लाज, या लाज लज्जा की बात है वो, या किसी के सामने शर्म शर्म की बात है, निस्सा है। हर एक व्यक्ति दिखाना चाहता है कि नहीं मैं परफेक्ट है, मैं पूरा संभाल ठीक ठाक हूं, किसी का मुझे आश्रय की जरूरत नहीं, एकदम ठीक ठाक। पर जब ऐसा परिस्थिति आ जाता है कि जब पूरा निस्सा हो जाते हैं तो एक प्रकार का मेरी ऐसा कैसा, एक्चुअली हर क्षण हम निस्सा है, एक एक सांस भी ले रहे हैं ना वो भगवान की कृपा से ले रहे। 2 मिनट बंद हो जाए सांस, देखेंगे निस्सा हो जाता है आदमी, हमको लगता है पूरा सब कुछ नियंत्रण में है, पर सब कुछ चल रहा है किसी और के नियंत्रण से। तो वो परिस्थिति जो हमें याद दिलाता है हमारा मूल स्थिति क्या है, टोटली हम निस्सहाय हैं, हर क्षण भगवान के ऊपर आश्रय, स्वाभाविक रूप से आश्रय लेना आसान हो जाता है। तो ये यहां बता रहे, ऐसे महात्मा गण जो हैं वो ऐसे पर्वत के समान और पूर्ण रूप से आश्रय लेते हैं। तो इस तरह से मैं आप सब से निवेदन करूंगा, दशम स्कंद का 20वां अध्याय वृंदावन में वर्षा और शरद ऋतु का वर्णन का एक एक श्लोक भी आप पढ़िए, और भी बहुत सुंदर से वर्णन है। अभी 4-2 महीने तो बारिश रहेंगे, तो इस बारिश रूप बारिश के जो सीजन में कृष्ण भावना भावित होना है बहुत अच्छा तरीका है, ये पढ़ो और हर क्षण बादलों को देखो, पेड़ों को देखो, छोटे छोटे झरनाओं को देखो, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। श्रील प्रभुपाद की जाय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जाय, निताय गौर प्रेमानंदी। छोटा सा बाल उत्सव होने वाला है, इसके बाद अनाउंसमेंट और तत्पश्चात कीर्तन।